एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसका हम सब मतलब हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि ये काम कैसे करती है। हाँ, भाषा।
बिल्कुल।
और हमारे इस सफर में गाइड होगी पीएच मैथ्यूज की किताब लिंग्विस्टिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब भाषा विज्ञान का एक छोटा सा परिचय।
हाँ, तो आज हम जानेंगे कि भाषा का ये जो वैज्ञानिक अध्ययन है, ये आखिर है क्या, और इसका असल मकसद क्या, कहते इसका रोल और गोल क्या है।
सही कहा, और ये सवाल आज आप देखिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया
है ना। हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, गूगल पे कुछ ढूंढते हैं, सीरी या एलेक्सा से बात करते हैं, ये सब चीजें भाषा की गहरी समझ पर ही तो टिकी हैं।
बिल्कुल। और आपस में भी एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी भाषा की बनावट है कैसी, वो काम कैसे करती है।
हाँ, ये बात तो है।
तो ये किताब हमें वो स्कूल वाले रटे रटाए नियमों या ये सही है वो गलत है के झगड़े से थोड़ा निकाल कर भाषा को एक सिस्टम की तरह एक वैज्ञानिक नजरिए से देखना सिखाती है।
अच्छा
तो चलिए भाषा की इस फैसिनेटिंग दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं।
जी।
तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लें।
पीटर ह्यूगो मैथ्यूज, यानी पीएच मैथ्यूज, 1934 से 2023, ये ब्रिटेन के एक बहुत माने हुए भाषा विज्ञानी थे।
जी हाँ, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे। देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो भाषा विज्ञान के मुश्किल से मुश्किल विचारों को भी ना बहुत साफ और सरल तरीके से समझा सकते थे।
अच्छा।
हाँ, और उन्होंने 20वीं सदी में भाषा विज्ञान में जो बड़े बदलाव हुए, जैसे वो नोम चॉम्स्की की क्रांति थी,
हाँ हाँ सुना है।
उसको बहुत करीब से देखा था और उसकी वाकई गहरी समझ रखते थे।
ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी एक तरफ झुके हुए नहीं थे, किसी एक आइडिया के कट्टर समर्थक होने के बजाय हमें पूरे विषय का एक बैलेंस नजरिया दे सकते हैं, जैसे कोई अनुभवी गाइड होता है।
बिल्कुल सही। उनकी वो अकादमिक गहराई और ये जो समझाने की कला थी ना, इसी का मेल उन्हें इस तरह की एक इंट्रोडक्टरी किताब के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। वो हमें दिखाते हैं कि भाषा विज्ञान का असल काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है।
तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में? क्या ये मतलब हमें कोई नई भाषा सीखने में मदद करती है या हमारी ग्रामर सुधारती है?
नहीं, देखिए सीधे तौर पर तो नहीं। किताब का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स के असली रूप को सामने लाना।
अच्छा।
ये सिर्फ कोई विदेशी भाषा सीखने या व्याकरण की गलतियां ठीक करने से कहीं आगे की बात है। स्कूल में हम अक्सर सीखते हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए, उसे प्रिस्क्रिप्टिविज्म कहते हैं, मतलब आदेश देना।
अच्छा, हाँ हाँ कि ऐसे बोलो वैसे मत बोलो। तो फिर लिंग्विस्टिक्स क्या करता है?
लिंग्विस्टिक्स है एक वर्णनात्मक विज्ञान यानी डिस्क्रिप्टिव साइंस।
डिस्क्रिप्टिव।
हाँ, इसका काम ये बताना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये समझना है कि इंसान असल में भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये भाषा की बनावट, उसके सीखने की प्रक्रिया, दिमाग और समाज में वो कैसे काम करती है और वक्त के साथ उसमें जो बदलाव आते हैं, उन सब का अध्ययन करता है। इसका लक्ष्य है भाषा के उन नियमों को खोजना और समझना जो असल में चलन में है।
तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे हम भाषा के इस्तेमाल करने वाले से ज्यादा भाषा के एक सजग ऑब्जर्वर बन रहे हैं। जैसे कोई बायोलॉजिस्ट जंगल में जानवरों को देखता है, वो ये नहीं बताता ना कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए।
क्या बढ़िया मिसाल दी। बिल्कुल यही किताब यही सवाल पूछती है, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने का असल मतलब क्या है, और दिखाती है कि भाषा कोई अटपटे नियमों का झुंड नहीं है, बल्कि एक गहरी, लॉजिकल और लगातार बदलने वाली प्रणाली है।
ये दिलचस्प है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आपने कहा कि भाषा विज्ञान वर्णनात्मक है, आदेशात्मक नहीं। ये बात तो भाषा विज्ञान के रोल और गोल के लिहाज से बहुत ही अहम लगती है।
निश्चित रूप से, यही तो भाषा विज्ञान की बुनियाद है। देखिए, भाषा विज्ञानी का काम डॉक्टर की तरह बीमारी का पता लगाना है, जज की तरह फैसला सुनाना नहीं कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। वो बस ये देखता है कि अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसके पीछे क्या पैटर्न या नियम काम कर रहे हैं। कोई भी बोली या लहजा अपने आप में खराब या अशुद्ध नहीं होता।
ये तो बड़ी राहत की बात है, खासकर हमारे देश भारत में जहाँ इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं। अक्सर लोग अपनी बोली को लेकर थोड़ा क्या कहते हैं, झिझकते हैं या फिर दूसरों की बोली का मजाक उड़ाते हैं।
और इसी वैज्ञानिक नजरिए को स्थापित करने में फर्डिनेंड डी सॉसर का बड़ा हाथ है, जिन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का पितामह भी माना जाता है।
सॉसर, हाँ, नाम सुना है।
उनका एक मुख्य विचार है लिंग्विस्टिक साइन की मनमानी प्रकृति, आर्बिट्ररीनेस ऑफ द साइन।
लिंग्विस्टिक साइन की मनमानी प्रकृति, ये सुनने में थोड़ा भारी सा लग रहा है, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ?
इसका सीधा सा मतलब है कि किसी शब्द की आवाज और उसके मतलब के बीच कोई जरूरी या कह लीजिए कुदरती रिश्ता नहीं होता।
अच्छा।
हाँ, जैसे कुर्सी शब्द की ध्वनि कुर्सी में ऐसा कुछ खास नहीं है जो उसे सीधे बैठने वाली चार टांगों की चीज से जोड़ दें। ये रिश्ता बस मान लिया गया है, पारंपरिक है, कन्वेंशन है।
ओह, अच्छा, तो इसीलिए अलग अलग भाषाओं में एक ही चीज के लिए बिल्कुल अलग आवाज वाले शब्द होते हैं, जैसे जैसे हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में ओ।
हाँ,
सब एक ही चीज के लिए हैं पर आवाजें बिल्कुल जुदा।
एकदम सही। अगर आवाज और मतलब में कोई कुदरती रिश्ता होता तो शायद दुनिया में एक ही भाषा होती, है ना?
जी।
यही मनमानी प्रकृति भाषा को इतना लचीलापन देती है कि हम नए विचारों के लिए नए शब्द गढ़ सकें और भाषा समय के साथ बदल सके।
ये तो कमाल की बात है। भाषा एक तरह का कोड है जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है और मान लिया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाषा की बनावट पर। आवाजों से शुरू करें?
हाँ, क्यों नहीं। सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि ही है। तो भाषा विज्ञानी देखते हैं कि किसी भाषा में कौन कौन सी सार्थक ध्वनियां हैं जिन्हें फोनीम कहते हैं।
फोनीम?
जी, फोनीम। ये वो ध्वनियां हैं जिनके बदलने से मतलब बदल जाता है। जैसे हिंदी में प और बा अलग अलग फोनीम हैं, क्योंकि पाल और बाल अलग अलग शब्द हैं।
हाँ, बिल्कुल।
तो भाषा विज्ञानी ये भी अध्ययन करते हैं कि इन ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, उसे फोनेटिक्स कहते हैं, और किसी भाषा में ये ध्वनियां मिलकर शब्द कैसे बनाती हैं, वो फोनोलॉजी है।
ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं।
जी।
तो शब्दों के अंदर भी कोई संरचना होती होगी, कोई बनावट?
बिल्कुल, उसे मॉर्फोलॉजी यानी शब्द संरचना विज्ञान कहते हैं। इसकी जो मूल इकाई है वो है मॉर्फीम।
मॉर्फीम?
हाँ, मतलब अर्थ की सबसे छोटी इकाई। जैसे घर एक मॉर्फीम है और ये अकेला शब्द भी है, इसे फ्री मॉर्फीम कहते हैं।
अच्छा।
लेकिन जैसे लड़के शब्द है, इसमें दो मॉर्फीम है, एक तो लड़क जो मूल अर्थ दे रहा है और दूसरा ए जो बहुवचन का व्याकरणिक अर्थ दे रहा है। ये ए अकेले नहीं आ सकता, उसे किसी के साथ जुड़ना ही पड़ता है, तो इसे बाउंड मॉर्फीम कहते हैं।
अच्छा, तो जैसे पढ़ाई शब्द है, इसमें पढ़ और आई दो मॉर्फीम हो गए। पढ़ तो मूल क्रिया हो गई और आई ने उसे संज्ञा बना दिया।
बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो आई जोड़ना है, ये डेरिवेशन का उदाहरण है, जिससे एक नया शब्द क्रिया से संज्ञा बन गया। और लड़के में जो ए जोड़ा था वो इन्फ्लेक्शन का उदाहरण है, जिससे सिर्फ व्याकरण की जानकारी मिली, एक वचन से बहुवचन, पर शब्द का प्रकार नहीं बदला, वो संज्ञा का संज्ञा ही रहा।
बाप रे।
तो कहने का मतलब है कि व्याकरण सिर्फ वाक्यों में नहीं, शब्दों के अंदर भी काम करता है।
ये तो सचमुच पढ़तों के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, शब्दों से आगे बढ़कर वाक्य कैसे बनते हैं, वो क्या है?
वो है सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास का क्षेत्र। देखिए, वाक्य सिर्फ शब्दों की एक सीधी लाइन नहीं होते। उनकी एक अंदरूनी बनावट होती है, एक ढांचा होता है। जैसे हम कहें बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इसमें बिल्ली ने एक हिस्सा है कर्ता वाला।
हाँ।
और चूहे को पकड़ा दूसरा हिस्सा है कर्म और क्रिया वाला। ये हिस्से फिर आपस में जुड़कर पूरा वाक्य बनाते हैं। इसे कहते हैं श्रेणीबद्ध संरचना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर।
जैसे वो लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनसे सिर्फ एक लंबी लाइन नहीं बनाते, बल्कि घर या गाड़ी जैसी एक पूरी संरचना बनाते हैं।
और हम सब ये इतनी जटिल संरचनाएं बिना सोचे समझे रोज इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
और यहीं पर नोम चॉम्स्की का वो जेनरेटिव ग्रामर का आइडिया आता है, कि हमारे दिमाग में नियमों का एक सीमित सा सेट होता है, लेकिन उससे हम अनगिनत बिल्कुल नए वाक्य बना और समझ सकते हैं। ऐसे वाक्य भी जो हमने पहले कभी सुने ही नहीं होते। ये क्षमता तो कमाल की है।
है तो। अच्छा, संरचना की बात हो गई, पर अर्थ का भी तो अध्ययन होता होगा ना, मीनिंग का?
हाँ, उसके लिए है सिमेंटिक्स और प्रैग्मैटिक्स। सिमेंटिक्स जुड़ा है शब्दों और वाक्यों के सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ से, लिटरल मीनिंग से। जैसे कुर्सी का मतलब क्या है?
ठीक है, और प्रैग्मैटिक्स?
प्रैग्मैटिक्स ये देखता है कि असल बातचीत में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब कैसे बदल जाता है।
अच्छा, इसका कोई उदाहरण देंगे?
जरूर। मान लीजिए आप किसी के कमरे में गए और वहां बहुत गर्मी है, उमस है, और आपने कहा यहाँ तो बड़ी घुटन हो रही है, अब इसका शाब्दिक अर्थ तो बस कमरे की हालत बताना है।
हाँ,
लेकिन असल मतलब शायद ये हो कि भाई जरा खिड़की खोल दो या पंखा चला दो, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल।
तो ये जो संदर्भ से निकलने वाला अर्थ है जो कहा नहीं गया पर समझ लिया गया, यही प्रैग्मैटिक्स का विषय है। इसमें बोलने वाले का इरादा, सुनने वाले की समझ, बातचीत का माहौल सब मायने रखता है।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं होता, उनके इस्तेमाल के तरीके में भी छिपा होता है, तो बहुत दिलचस्प है।
बिल्कुल, और भाषा विज्ञान यही नहीं रुकता, वो भाषा को उसके सामाजिक संदर्भ में भी देखता है, जिसे सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, मतलब समाज का भाषा पर क्या असर है। फिर मानसिक संदर्भ में साइकोलिंग्विस्टिक्स, यानी दिमाग भाषा को कैसे प्रोसेस करता है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, और ऐतिहासिक संदर्भ में भी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, मतलब भाषाएं समय के साथ कैसे बदलती हैं।
वाह, तो ये तो बहुत पहलावा विषय है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा से क्या कुछ मुख्य बातें हैं जो हम कह सकते हैं कि निकल कर आती हैं?
हाँ देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल से ये है कि भाषा ऊपर से जितनी आसान सी दिखती है ना, अंदर से उतनी ही जटिल और व्यवस्थित है। मतलब ध्वनि से लेकर पूरी बातचीत तक हर लेवल पर नियम और पैटर्न काम कर रहे हैं, कोई रैंडम चीज नहीं है ये।
सही है। दूसरी बात?
दूसरी और जो मुझे लगता है शायद सबसे अहम है, वो ये कि भाषा विज्ञान का काम वर्णन करना है, आदेश देना नहीं। डिस्क्रिप्टिव नॉट प्रिस्क्रिप्टिव।
हाँ, ये आपने शुरू में भी कहा था।
जी, इसका रोल जज बनना नहीं बल्कि एक निष्पक्ष वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण करना है, और ये समझ हमें भाषाई विविधता का सम्मान करना सिखाती है। भारत जैसे देश के लिए ये कितना जरूरी सबक है, सोचिए।
बिल्कुल। तीसरी बात?
तीसरी बात ये कि हम सबके अंदर अपनी भाषा के नियमों का एक गहरा, एक अवचेतन ज्ञान होता है, तभी तो छोटे बच्चे बिना ग्रामर की किताब पढ़े ही अपनी मातृभाषा इतनी आसानी से और सही से ही बोलने लगते हैं। ये हमारी एक अद्भुत मानसिक क्षमता है।
सच में। और चौथी बात?
और चौथी ये कि भाषा अकेली नहीं है, वो हमारे मन, हमारे समाज और हमारे इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। उसे पूरी तरह समझने के लिए इन संदर्भों को समझना भी उतना ही जरूरी है।
किताब में जरूर कुछ ऐसी बातें या विचार होंगे जो एकदम दिमाग में बैठ जाते हैं। कोई खास बात जो आपको याद आ रहे हो?
हाँ, एक तो यही बात जो हमने अभी की कि भाषा विज्ञानी का काम सही गलत तय करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि लोग असल में बोलते कैसे हैं। ये हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना जजमेंट के भाषा को देखने की दावत देता है।
और वो आवाज और अर्थ के बीच के मनमाने रिश्ते वाली बात भी?
वो भी काफी सोचने वाली है। बिल्कुल, सॉसर का ये विचार कि भाई पेड़ ध्वनि का पेड़ के विचार से कोई कुदरती रिश्ता नहीं है, ये बताता है कि भाषा असलियत की सिर्फ नकल नहीं है बल्कि एक प्रतीकात्मक औजार है, एक सिम्बॉलिक टूल।
अच्छा,
और इसी वजह से ये इतनी लचीली है, इतनी क्रिएटिव है और बदलती रहती है। कह सकते हैं ये भाषा की सुपर पावर है।
सुपर पावर। और एक विचार जो मुझे भी सोचने पे मजबूर कर रहा है, वो बच्चों के भाषा सीखने से जुड़ा है।
हाँ, कि भाई बच्चे इतने कम और अक्सर अधूरे या टूटे फूटे इनपुट से, मतलब जो सुनते हैं उससे इतने जटिल नियम कैसे सीख लेते हैं,
है ना? ये तो जादू जैसा लगता है।
हाँ, तो चॉम्स्की जैसे विचारक कहते हैं कि शायद हम भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता के साथ, एक तरह के यूनिवर्सल ग्रामर के खाके के साथ पैदा होते हैं। ये उस चमत्कार को समझने की कोशिश है।
ये सब जानना अकादमिक तौर पर तो दिलचस्प है ही, पर क्या इसके कुछ व्यवहारिक फायदे भी हैं? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें कैसे काम आ सकती हैं?
अरे जरूर हैं। पहला तो ये कि इससे बेहतर संवाद और सहानुभूति पैदा होती है। अगर हम समझें कि अलग अलग लोग या समुदाय भाषा का अलग तरह से इस्तेमाल क्यों करते हैं या कैसे संदर्भ मायने रखता है, वो प्रैग्मैटिक्स वाली बात, तो गलतफहमियां कम होंगी।
हाँ, ये तो है।
खासकर हमारे जैसे विविधता भरे देश में, चाहे दफ्तर हो या परिवार, ये बहुत काम आ सकता है।
और शायद नई भाषा सीखते समय भी ये नजरिया मदद करे, मतलब नियमों को सिर्फ रटने के बजाय उनके पैटर्न को समझना।
बिल्कुल, ये भाषा सीखने को ज्यादा लॉजिकल और शायद कम बोझिल बना सकता है। और तीसरा फायदा है आलोचनात्मक सोच का विकास, क्रिटिकल थिंकिंग।
वो कैसे?
जब हम समझते हैं कि भाषा का इस्तेमाल कैसे हमें प्रभावित करने, हमारी राय बनाने या यहाँ तक कि हमें गुमराह करने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो मीडिया हो, विज्ञापन हो या किसी नेता का भाषण, तो हम ज्यादा सजग पाठक और श्रोता बन जाते हैं। हम छुपे हुए मतलब या भ्रामक दावों को बेहतर पहचान पाते हैं।
ये तो बहुत जरूरी स्किल है आजकल, और आजकल की टेक्नोलॉजी को समझने में भी मदद मिलती होगी, जैसे ये गूगल ट्रांसलेट या चैटबॉट वगैरह।
हाँ बिल्कुल, ये जो AI सिस्टम्स हैं, ये भाषा विज्ञान के इन्हीं सिद्धांतों पर तो बने। वाक्य कैसे बनते हैं, अर्थ कैसे काम करता है, इनकी थोड़ी बहुत समझ हमें इस टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने और हाँ, उसकी सीमाओं को जानने में भी मदद करती है।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी हैरानी की बात यही निकल कर आई है कि हम हर रोज हर पल भाषा इस्तेमाल करते हुए कितनी जटिल, कितनी अविश्वसनीय मानसिक कसरत करते हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता।
सही कहा।
वाक्य सोचना, फिर सही शब्द चुनना, उन्हें सही क्रम में लगाना, फिर बोलना और साथ ही सामने वाले की बात समझना, ये सब दिमाग में बिजली की तेजी से होता है। भाषा वाकई एक अजूबा है जिसे हम अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं।
और एक सवाल जो मेरे मन में अब घूम रहा है वो ये है, अगर भाषा हमारे सोचने के तरीके को थोड़ा बहुत प्रभावित करती है, एक सिद्धांत है ना लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का,
हाँ सुना है,
तो क्या हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं की जो अपनी खास बनावट है, जैसे शब्दों के लिंग होते हैं या क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं, क्या वो हमें दुनिया को अंग्रेजी बोलने वालों से जरा अलग ढंग से देखने में मदद करती होगी? ये बस एक सवाल है जिसका जवाब शायद आसान नहीं है, पर सोचने लायक जरूर है।
ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि भाषा सिर्फ विचारों को पहनाने वाला कपड़ा है या वो विचारों को ढालने वाला औजार भी है। लगता है भाषा की दुनिया में खोजने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।